खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। जैसा कि आप सबको याद है कि हम मसीही ज़िंदगी में उन बेफ़ायदा बातों पर और फ़ायदा की बातों पर गौर कर रहे हैं। कल हमने खुदावंद के कलाम में से तमोथियस के वसीला से सीखा था कि पालूस रसूल से नसीहत करता है, उसे तालीम देता है कि इस दुनिया में रहते हुए दौलत जो कि हर एक इंसान की ज़रूरत है, उसे ज़रूरत ही समझना ज़रूर है। जब इंसान दौलत को अपनी ख्वाहिश बनाता है तो उसकी जड़ क्या करती है? बहुत से ईमानदारों को और आदमियों की ज़िंदगी को तबाह व बर्बाद कर देती है। सो कल हमने जिस आयत पर गौर किया था वो 9वीं आयत थी। पहला तमोथियस 6 बाब उसकी 9वीं आयत, जो कल नहीं आ सके थे उनकी याद दहानी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुँचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमी को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। और लिखा है 10वीं आयत में, क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की एक जड़ है, जिसकी आरजू में बथेरे ईमान से गुमराह हो गए। सो कल हमने देखा था कि बहुत सी जड़ों में से दौलत की ख्वाहिश, जो बुरी ख्वाहिश है, इंसानों के लिए बहुत दफा उनके ईमान का बेड़ा गर्क कर देती है। इसलिए हमारी मसीही ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी गदूदें अबलीस पैदा करना चाहता है जिससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं है। और हमने कल देखा था कि ये गदूदें हैं जो छोटे गुनाह हैं, जो वो गुनाहों से क्या बनती है? जड़ बनती है। और वो जड़ जब हमारी ज़िंदगी में शिकंजा या कायम हो जाती है तो वो गदूद कहलाती है। सो हमें उन गदूदों से किनारा करने की जरूरत है। सो आए मेरे साथ निकालें रोमियो 12 बाब। जो कोई निकाल ले वो रोमियो 12 बाब मेरे साथ निकाले और देखे इसकी पहली आयत को।
बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमत से याद दिला कर तो इल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है।
शुक्रिया। पहली आयत में पालूस क्या कहता है? हमारे फायदे की बात कि ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें, खुदा की बरकतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। उस कुर्बानी, उस नजर, उस इबादत का कोई फायदा नहीं अगर वो खुदा को पसंदीदा ना हो। हमें बाइबल मुकद्दस में एक खानदान का जिक्र मिलता है। बाइबल मुकद्दस बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड यानी कि सीधी बात करती है, किसी की तरफदारी नहीं करती। हमें इमाल की किताब उसके 5वें बाब में एक खानदान का जिक्र मिलता है, हन्ना और सफीरा को, ननिया और सफीरा का, वो खामद और बीवी। उन्होंने भी खुदा की नजर के लिए हदिया, अपना मकान बेच बाज कर सब कुछ क्या किया कि हम खुदा को खुदा के रसूलों के पांव पर रखेंगे। और उन्होंने ये ठान लिया, और जब उन्होंने खुदा के हजूर अपना हदिया पेश किया तो वो नाकमकबूल ठहरा, पसंद नहीं आया। क्यों? क्योंकि जो कुछ ठहराया था उसमें से उन्होंने निकाल लिया ताकि अपने खाने पीने और अपनी ख्वाहिशों को और अपने बुढ़ापे की जिंदगी के लिए। सो खुदावंद का बंदा पलूस रसूल फरमाता है, अपने बदन, अपनी जिंदगी ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। अगर खुदा की हजूरी में हमारी जिंदगी, हमारा चाल चलन पसंदीदा नहीं तो फिर वही बात होगी जो 10 अहकाम में खुदावंद खुदा ने मूसा से कही कि तुम मेरा बेफायदा नाम ना लेना। बेफायदा नाम से मुराद यही है कि अपने फायदे के लिए अपना फायदा ढूंढना, और जैसे वहां पर लोग करते थे। मुझे यहोवा पाक की हयात की कसम, मैं सच बोल रहा हूं, और बाद में झूठ बोलना तो उस कसम का कोई फायदा नहीं होता था। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसका नतीजा क्या निकाल कर हमको दिया था कि ना तुम आसमान की कसम खाना क्योंकि वो मेरा तख्त है, और ना जमीन की क्योंकि वो मेरे पांव तले की चौकी है, बल्कि क्या करना, तुम्हारा जवाब क्या हो, हां की जगह हां और ना की जगह ना। झूठी कसमें खाने की कोई जरूरत नहीं है। सो पालूस रसूल कहता है, अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो पसंदीदा, जिससे हमको फायदा हो। हमारा फायदा क्या होगा, हमारी इबादत, रियाजत, हमारी मनाजात, हमारी जिंदगी अगर दुरुस्त तरीके से खुदा की हजूरी में गुजरानी जाएगी तो उससे हमें रूहानी फल लगेगा। अगर नहीं होगी तो हमें उससे कोई फायदा नहीं। इसलिए आगे क्या लिखा है, दूसरी आयत, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। हम बहुत तजर्बा करते हैं घरों में, कोई बिजली का काम करता है तो वो तजर्बा करना चाहता है कि मैं बल्ब को बनाकर उसको ऐसे ऐसे इस्तेमाल करूं और उसका नतीजा क्या निकलेगा। फायदे की बात है, खुदा का कलाम कहता है तजर्बा करो। जैसे एक जगह कहा गया है कि खुदा को मत अजमाओ, दूसरी जगह लिखा गया है अजमा कर देखो मैं कैसा हरीम और गफूर और रहम करने वाला खुदा हूं। अजमा कर देखो, अजमा कर देखो खुदा को, ये नहीं कि खुदावन खुदा, दो तरह की अजमाइश, इस बात को हम ईमानदारों को समझने की जरूरत है। ये नहीं कि आप साहिवाल के पुल पर खड़े होकर कहें कि खुदावन मेरे खुदा मैं तुझ पर ईमान रखता हूं, अब मैं तुझे अजमाने वाला हूं और छलांग लगा दें। ये खुदा की क्या है, अजमाइश है। खुदा की अजमाइश है जिसमें हमारी नीयत, हमारा रवैया, हमारे पीछे जो बात है वो क्या है, गलत है। और दूसरी जगह जहां पर खुदा कहता है अजमा कर देखो मैं कैसा हरीम रहीम हूं, रहम करने वाला हूं, हलीम हूं, वहां पर खुदावंद खुदा, शरीरों ने मुझे घेर लिया। याद है आपको वाकया एलिया नबी का और बाल के पुजारी, खुदावंद खुदा बाल के पुजारी कहते हैं कि उनका खुदा जिंदा है, वो जिस देवता को मानते हैं वो उनके लिए जीव जीव काम करता है। ऐसे हालात में एलिया ने खुदा को यकीन के साथ क्या किया, पुकारा। और एलिया के खुदा की आजमाइश बाल के पुजारियों के सामने है, और उस आजमाइश में हम क्या देखते हैं, एलिया, आसमान के खुदा तू आग से और पानी से जवाब दे। एलिया का पीछे उसके मकसद क्या था कि इस कुर्बानी को पानी से लबालब कर दो, क्योंकि बाल के पुजारी मानते थे कि बाल का जो देवता है, बाल देवता है, वो पानी का खुदा है, वो पानी बरसा सकता है, उसकी मर्जी से पानी हिलता जुलता और चलता फिरता है। और फिर एलिया के सामने जब उन्होंने कहा कि एलिया ने कहा कि आसमान से आग नाजिल होगी, तो वो इस बात पर यकीन करते थे कि बाल क्या है, आग का देवता है, वो आग से जवाब देगा। एलिया ने उन्हीं चीजों को इस्तेमाल किया जिन पर उनका तवक्कल था, पुजारियों का, जो बचपन से वो करते आ रहे थे। सो एलिया ने दुआ की कि आसमान के खुदा तू आग से जवाब दे, और सारा पानी क्या हो गया, चट हो गया, जगह आसमान से आग नाजिल हुई। तो एक ये तरीका है खुदा की उस बात को मानने का, अजमा कर देखो मैं कैसा ईमानदार और वफादार खुदा हूं। सो ये हमारे फायदा की बातें हैं। हाँ जी, सो ये हमारे फायदा की बातें हैं। इन फायदा की बातों पर हमें गौर करने की जरूरत है, ना कि पुल पर खड़े होके मैं छलांग लगाऊंगा तो जवाब दे है कि नहीं है, तो हम अपना नुकसान करेंगे। बेफायदा बातों में जिनमें हम अपना फायदा या हम अपनी क्या कहते हैं बढ़ोतरी करना चाहते हैं उनमें कोई फायदा नहीं है। मिसाल के तौर पर दो हमें पैगाम बड़े दिन के पैगाम पर आलम बाला पर खुदावन की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। यहां पर हमें पैगाम है कि यीशु मसीह सुलह करवाने के लिए आया और आगे चलकर खुदावंद यीशु मसीह अपने शिगिर्दों से क्या कहते हैं, मैं सुलह करवाने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूं। सो इन दोनों बातों का अगर हमसे कोई गैर कौम पूछे तो उसका क्या जवाब देंगे? सादा, वो अमन का शहजादा है, इंसान का जो टूटा हुआ रिश्ता है उसे बहाल करने के लिए हमारा दरमियानी यीशु मसीह है, इसीलिए इसे अमन का शहजादा कहा गया है। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं लड़ाई करवाने तलवार चलवाने आया हूँ, जुदाई डालने आया हूँ, तो वहाँ पर सादा और सिर्फ शफाफ बात यह है कि जो कोई मेरे भीड़ खाना का है उसके मुखालफ जितने हैं वो सब उनसे घिन रखेंगे। और उसमें खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जब तुम मेरे पीछे चलोगे तुम्हारी माँ, तुम्हारा बाप, तुम्हारा बेटा, तुम्हारी सास, तुम्हारी बहू, हर कोई तुम्हारे खिलाफ होगा सवाए बीवी को तुम्हारे खिलाफ होगा। तो जब 10 जी बाल के पुजारी हैं और एक बंदा यीशु मसीह का पुजारी है तो फिर अमन होगा नहीं, सुकून होगा नहीं, फिर क्या होगा? लड़ाई। जैसे बहुत दफा ड्रामा चलता है सास और बहू का, सास और बहू का ड्रामा, उसमें क्या है? वो घर घर का ड्रामा उन्होंने बनाया है। क्यों? क्योंकि बहू नाफरमान है तो सास मोहब्बत करती है तो क्या होती है? लड़ाई होती है। और कभी कह सकते हैं कि बहू फरमाबरदार है और सास सही मोहब्बत नहीं करती तो क्या होता है? लड़ाई होती है। इसलिए खुदावंद का बंदा पालूस रसूल कहता है तजर्बे से मालूम करो, हमें जांचने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत है सच क्या है, क्योंकि हमारा एक मुखालफ अबलीस जो नहीं चाहता कि आपका और मेरा भला हो। फायदे के लिए जो लफ्ज बाइबल मुकद्दस में इस्तेमाल हुए हैं, खुदावंद खुदा का बंदा सुलेमान बादशाह वाज की किताब में जो लफ्ज इस्तेमाल करता है वो क्या है? बातल, बेफायदा के लिए बातल। दाऊद नबी खुद इस्तेमाल लफ्ज करता है बातल या बुतलान, यीशु मसीह लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बातल, कि ये बेफायदा मेरी इबादत करते हैं और इंसानी अहकाम की तालीम देते हैं, इनसे कोई फायदा नहीं। और फिर पालूस रसूल भी लफ्ज इस्तेमाल करता है कोई तुमको बेफायदा बातों से गुमराह ना करे। सो हमें अपनी जिंदगी में बेफायदा बातल बुतलान हवा की चरान या फिर क्या कह सकते हैं नाजेबा नापसंदीदा और कह सकते हैं कि जिसमें हमारी भलाई नहीं, उन कामों से क्या करने की जरूरत है? किनारा, किनारा करने की जरूरत है। खुदा का कलाम हमें दिया गया है रहनुमाई के लिए, हमने सीखा था। खुदा का कलाम हमें दिया गया है कि दुआ में हिम्मत ना हारें। और तीसरी बात हमने सीखी थी कि जब दुआ करें वाज़ह तौर पर करें जिससे हमारा फायदा हो। और चौथी बात, बेफायदा बातों से किनारा करें। सो बेफायदा बातें कौन सी है? अगर आप खुदा की आजमाइश करना चाहते हैं तो जांच लें कि आप खुदा की आजमाइश किस तरीके से कर रहे हैं। एलिया नबी का और बाल के पुजारियों का किस्सा अपनी जिंदगी में देखें, और या फिर मैं छलांग लगा दूंगा, देखता हूं कि खुदा मुझे बचाता है या नहीं। सो आजमाइश को दुरुस्त तरीके से करने की जरूरत है। तोमा रसूल ने भी खुदा की आजमाइश की थी। ये एक ऐसी आजमाइश है जिसमें उसने चाहा कि हाँ मैं जानता हूं मेरा खुदावन है, लेकिन मैं चाहता हूं जब तक उसे ना देख लूं। अगर आज आपके दिल में शक है तो मैं चाहता हूं कि आप तोमा की तरह कहें, हाँ खुदा अगर तू वाकया ही है, जैसे अरब मुबालक का जो सऊदी अरब का एक शहजादा है जिसने पिछले ही महीने कहा कि हाँ अगर तू मसीहा वाकई ही सच है जैसे कि मैं हज़ारों से सुन रहा हूँ करोड़ों से सुन रहा हूँ हर जगह पर खबरें हैं कि मसीह के नाम से कत्ल किया गया मसीह के नाम से गुम हो गया मसीह के नाम से फांसी पर चढ़ा दिया गया मसीह के नाम से संसार किया गया मसीह के नाम से क्या तू सच है। तो दुबई के शहजादे ने जिसे प्रिंस कहते हैं गालबन 3 माह या उससे ज़्यादा की बात है अखबार में आया, उसने खुदावंद यसु मसीह को पुकारा कि अगर तू है तो जाहिर हो। तो उसने यसु मसीह को कबूल किया जब उसने सुना मैं वो ही हूँ जिसने कहा राह और हक और जिंदगी मैं हूँ। अगर आपका आजमान अमान इस तरह का डगमगा रहा है तो ये फायदे की बात है कि खुदावन यसु नासरी मुझ पर जाहर हो मेरी रहनुमाई कर, तो वो करेगा। ये वादा है बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना के झील में, मुझे पुकारो मुझ में कायम रहो तो मैं तुम में और मेरा बाप तुम में और तुम मुझ में होंगे और मैं अपने आप को तुम पर जाहर करूंगा। So, ये फायदा की बातें हैं। आए चंद फायदा की बातों पर गौर करें कि किन बातों में हमारा फायदा है। 7वीं आयत, अगर खिदमत मिली हो तो खिदमत में लगा रहे। खिदमत चर्च में डीकन की खिदमत हो सकती है, एल्डर की खिदमत हो सकती है, मुबशिर की खिदमत हो सकती है, उस्ताद की खिदमत हो सकती है, दुआगो की खिदमत हो सकती है, पादरी की खिदमत हो सकती है। इन बातों में हमारा फायदा है। हौसला अफजाई की खिदमत है, उस नेमत को मिली है तो उसे करना चाहिए। नसीहत की नेमत मिली है, नसीहत करना चाहिए। खिदमत मिली है तो खिदमत में लगा रहे। जिस किसी को जो भी खिदमत मिली है उसे पूरे दिल पूरी जान पूरी अकल पूरी ताकत पूरी कुव्वत से करें, तब ही उसका क्या है फायदा है। दूसरी बात, अगर कोई मुअल्लम हो तो तालीम में मशगूल रहे। याद है इब्तदाई कलीसिया में शिगिर्दों ने क्या कहा था, जब यूनानियों और यहूदियों की बेवाओं के दरमियान बांटने में और लेने देने में फर्क आ रहा था तो पालूस रसूल शिगिर्दों ने फैसला किया कि हम खुदा के कलाम की तालीम देंगे, तुम में से 7 रूल कुद्दस से भरे हुए और हिकमत वाले बंदे ईमानदार बंदे चुन लो, जिसके बारे में आज हम शाम चुनाव की बात करेंगे, जिसके बारे में आज हम शाम जब जुमे की शाम हम सब इकट्ठे होंगे इसके बारे में बातचीत करेंगे कि लोगों का चुनाव कलीसिया की तरक्की आने वाली नस्ल की हम किस तरह जिम्मेदारी ले सकते हैं। सो जिस किसी को तालीम का तोड़ा मिला हो वो तालीम दे, खा वो संडे स्कूल की है, खा वो पादरी साहबान को सिखाने की है, कलीसिया को सिखाने की है, औरतों को सिखाने की है, बच्चों को सिखाने की है, या फिर खुले में मनादी करने की है। अपने तोड़े को क्या करें, बेफायदा ना करें। तीसरी बात, हमारे पास वक्त 2 मिनट बचे हैं, अगर नासत हो तो नसीहत में, अगर नासत हो तो नसीहत में खरात बांटने वाला सखाफत से बांटें, सखाफत से साफ दिली से, ये नहीं मेरा मामा कबीर आले तो मेरा परदादा पशावरों, नहीं सखाफत से, तरफदारी से नहीं, पूरी सखाफत से पूरी दयानतदारी से पूरे तरीके से। पेशवा सरगर्मी से पेशवी करे, पासबान सरगर्मी से दलेरी से, ना के अगर मैं किसी को बता दिया कि जी आप गुनाह में हो तो मेरा हदिया रुक जाएगा, नहीं। मेरी यही दुआ है कि मैं ऐसा ना करूं, अगर करूं तो मैं खुदा से यही कहूंगा कि मैं इस जिम्मेदारी से बरी हूं कि तरफदारी करूं, क्योंकि इससे बेहतर है कि अमेरिका में किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धोना बेहतर है बजाय के तरफदारी करना। अगर कलीसिया में जिसे खुदा ने मेरी रहनुमाई में दिया है अगर वो बहन भाई गुनाह में है तो मेरा काम है कि पूरी दलेरी से कहना कि आप गुनाह में हो, यकीन करो या ना करो, चर्च आओ या ना आओ, जो गुनाह करेगा वो जान हलाक होगी। और हिजकिएल नबी तो यहां तक खुदा का कलाम, खुदा का उसे फरमान कहता है, अगर तूने जवाब नहीं दिया तो जितनी जानें हलाक हुई मैं तुझसे हिसाब लूंगा, खुदावंद फरमाता है। इसलिए पेशवा सरगर्मी से पेशवी करे, रहम करने वाला खुशी के साथ रहम करे, इससे फायदा है। ये ना करें कि रहम करें और उसमें वो क्या कहते हैं, तकड़ी जिस जब तोलते हैं तो उसमें क्या करते हैं, बेईमानी करना। बेईमानी से नहीं, बुरी नीयत से रहम नहीं करना, बल्कि रहम दिली से, खुशी से। मोहब्बत बेरिया हो, बेरिया यानी कि रियाकारी की मोहब्बत नहीं। ये नहीं कि हम मोहब्बत के बारे में सुनते रहें और कहें कि जी यहां से सुनी, यहां से निकाल दी। अगर हमारी मोहब्बत रियाकारी की मोहब्बत होगी तो कल हमने देखा था कि ऐसे लोग खुदा का नाम बदनाम करते हैं। गैर कौमों में, कलीसिया में खुदा मोहब्बत है लेकिन तुम दिखावे की मोहब्बत करते हो। मुझे एक जगह पर यह कहावत सुनने को मिली कि दो ग्रोह थे, एक तरफ से आवाज आती थी यीशु मसीह मोहब्बत है, आमीन, ये बैनर उठाया गया गैर कौमों की तरफ से। दूसरी तरफ से यीशु मसीह मोहब्बत है लेकिन कलीसिया की मोहब्बत रियाकारी की मोहब्बत है। अगर ये रियाकारी का पखंड हम में पाया जाता है तो हमें जांचने की जरूरत है, इससे हमारा कोई फायदा नहीं, इससे हमारा कोई फायदा नहीं है। बदी से नफरत करें, नेकी के तालब हों, यानी कि नेकी से लिपटे रहें, नेकी से लिपटे रहें, हर वक्त नेकी के ताबेदार रहें। इस बात पर खत्म करेंगे, मेरे साथ निकालें यकूब का खत। यकूब का खत उसका गालबन दो बाप, ये हवाला खुदा के पाक रू की रहनुमाई से मेरे जहन में आया है। यकूब चार बाप उसकी 17 आयत, चार बाप उसकी 17 आयत, सब कहेंगे, पस जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये गुनाह है। आमीन। खुदा बाप आज का कलाम हम सब के लिए उस सुवे की मानद हो जिसे खुदा खुदा बैल को जोता जाता है कि वो जमीन का सीना चीर कर उस मिट्टी को निकाले, उस अच्छी मिट्टी को निकाले और वो बुरी मिट्टी नीचे दब जाए। खुदा आज का कलाम हमें, हमारे लिए उस बैल की आर की मानद हो, सुवे की मानद हो कि हमारे दिलों में खुब जाए, ताकि हम अगर भलाई करना जानते हैं तो भलाई करने, अगर नहीं करते तो तूने कहा है कि ये गुनाह है। आज का कलाम हम सब के लिए, हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी हो।